जुल्म है फिर बरसरे,
जुल्म है फिर बरसरे,
पेकार मौला ये।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद। فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صلوات بجي محمد علی محمد پر ایزان محترم آپ سے درخواست کریں گے شہید سید حسن نصر اللہ शहीद इस्माइल हानिया और तमाम शोहदाए राय हक को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। मिलकर एक सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए वक्त बहुत हो गया, मुझे एहसास है मैं आपके ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगर दो तीन जरूरी बातें ना करनी होती तो मैं इतना भी हाइल ना होता आपके दरमियान, क्योंकि मुझे एहसास है वक्त बहुत है। गुजारिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा सा आगे से मटाइए, अर्ज कर दिया मैंने आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बुलंद आवाज से मिलकर एक सलवात भेजते हुए आगे आ जाइए जरूर। सलवात बुलंद आवाज से भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए मोहतरम, दो तीन इंतहाई पहले तो मैं एक सबक बस आपको बताऊंगा, जो बहुत सारे सबक सीखे लेकिन जो आज तक काम आ रहा है और इंशाल्लाह मरते दम तक काम आएगा। बिरादर अजीज हुजरत इस्लाम अल मुस्तमीन अल्लामा शहनशाह हुसैन नफी साहब ने जैसा कि आपकी खिदमत में अर्ज किया, फरमाया अर्ज नहीं किया बल्कि फरमाया कि बहरहाल एक छोटा सा कफ्श बर्दारी का ताल्लुक हमारा रहा उनके साथ, जूतियाँ उठाने वालों में हम शामिल थे उनके। ये 1992 से पहले की बात है, 90-91 की बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। उस वक्त शहीद आते थे, कुम में घर भी लिया हुआ था एक जगह पे, और ये बेटा उनका शहीद हो गया, छोटा सा था, 10-12 साल का था, क्योंकि जाहिर है 17 साल की उम्र में 97 में तो शहीदी हो गया था। ये छोटा सा था सैयद हादी, हम लोग जाते थे तो दो तीन आदमी, एक तो था ना उमूमी दर्श जिसकी तरफ इशारा किया, जहाँ दफ्तर था हमारा कुछ यखचाल कादी, वहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सब तलब आते थे, एक दर्श होता था उमूमी सबके लिए। एक होता था मतलब मिलने के लिए जाते, बुलाते थे हमें कि आप आए मेरे पास, दो चार अफराद हम लोग जाते थे उनके घर पे जाते तो एक बहुत सारे मैंने कहा सबक जो आज बताना चाह रहा हूं और खुदा की कसम आज तक काम आ रहा है। क्या देखो कभी शक के हालत में काम ना करना। हम लोग जाहिर एक मूवमेंट लेके चल रहे थे ना, हम एक तहरीक लेके चल रहे थे, तो हम कहा कि देखो ये याद रखना कि कभी शक की हालत में काम ना करना, पहले ये तय कर लेना, सोच लेना, समझ लेना कि तुम हक पर हो या नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि ये कितना काम आया, ये एक जुमला कितना काम आता है जिंदगी में, बताऊंगा अभी बताता हूं आपको, लेकिन पहले ये बता रहा हूं क्योंकि पहले ये तय कर लेना। और माजरत के साथ मौलाना मुनव्वर नकवी साहब भी तशरीफ फरमा है, ये भी हमारे जब कहीं साथी हैं और ये भी इन तमाम चीजों से आशना है, आगाही रखते हैं, ये भी सीनियर, ये तो मुझसे भी सीनियर है माशाल्लाह, तो ये सारे जाहिर है कि वहां पर हैं, गवाह रहे हैं सब। तो वो एक सबक क्या, शक की हालत में कभी काम ना करना, पहले तय करना कि तुम हक पर हो या नहीं, है ना। आपने देखा ना ढिल मिल यकीन होते हैं लोग, ढिल मिल यकीन, थोड़ी सी सख्ती आती है भागना शुरू हो जाते हैं, जरा सा प्रोपेगेंडा शुरू हुआ अकीदा गया, ये क्या हो रहा भाई, ये कब तक पिटे जाएंगे, ये तो खामखा की बातें कर रहे थे, चल रहे हैं ना, है ना। अपने भी मुनाफिकीन लगे हुए हैं, है? नाम के साथ जैदी नकवी फला फला फला, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप, अपने आप को इमामों से निस्बत देते हो, अपनी तहरीरें देखो, अपनी गुफ्तगू को देखो, जैसे जहर उगल रहा, सांप बन के बैठे। अच्छा इत्तेफाक से कल रात को ही मैंने उन सबको जवाब दिया था और मैं कहता जरा सेंस, मैंने कहा था 72 घंटे इंतजार करो, माशाल्लाह 24 घंटे में ही काम हो गया। कल मैंने कहा था, कुछ लोग मैंने कहा था कि 72 घंटे, मेरा टारगेट था 3 दिन का। मैं जानता हूं मैं रहा हूं, पला हूं, बड़ा हूं, इंकलाब की आगोश में मैंने आंखें खोली है, वहीं पला हूं बड़ा हूं, मुझे मालूम, मैं जानता हूं फितरत। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 घंटे में ही काम हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि यकीन क्या चीज होती है, ये यकीन क्या करता है। देखिए आप, ये क्यों कहा जाता है कार्य रिसालत, ये उलमा के काम को कार्य रिसालत कुरान मजीद में, आयात की तरफ नहीं जा रहा, जल्दी जल्दी आपको बताता चल जा रहा क्यों कहा जाता है कार्य भी। कार्य रिसालत यही है ना, अगर जाहिरी शिकस्त है तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ मैदान में, कौन जीता है, नमरूद जीता है, जनाब इब्राहिम जीते, कौन जीता भाई, किसको घर छोड़ना पड़ा, किसको हिजरत करनी पड़ी, किसको अपना बाबुल, बाबुल के थे ना जहां पे चले गए ना छोड़ के बीवी बच्चों को, तो जीते कब जाहिरी तौर पर, तो उस पर भी लोग शादियां बजा रहे थे ना, ढोल पीट रहे थे, नमरूद के भोपू है ना, नमरूद के, नमरूद के लुकमे खाए हुए लोग बड़बड़ बड़बड़ चीख रहे थे, क्या मिला इब्राहिम, क्या मिला, क्या हुआ इब्राहिम, घर गया, माल गया, सब गया, जिला वतन होना पड़ा, बीवी के साथ भांजे या खालाजाद भाई के साथ, खालाजाद भाई थे, भांजे थे जनाब लूत, निकलना पड़ा ना। तो पढ़ लो ना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, कब मैदान जंग में जीते, कहां जीते बताओ ना, किधर जीते, रात की तारीकी में कौम के साथ निकलना पड़ा था, वो तो अल्लाह ने हर किया ना फिरौन को, वो तो अल्लाह ने हर किया। तो उस पर भी लोग ये कहते थे कुरान बताता है, तो निशानदेही करता है, कुरान कहता है, मूसा की सफों में थे ऐसे बदबख्त मुनाफे, मूसा की सफों में थे जो कहते थे मरवा दिया, मरवा दिया, आगे दरिया है, पीछे फिरौन है, आगे इसराइल है, पीछे अमेरिका है। समझ आ रही है मेरी बात, समझ आ रही है बात, कुरान है तो कहानी किस्सों की किताब नहीं है, समझ में आ गई बात। अभी अभी देकर आ रहा हूं पूरा लेक्चर एक सूरह अहज़ाब से मुतालिक, लेकिन मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, बता रहा हूं कि यकीन कहते किसे, समझ में आए। जनाब मूसा की सफों में क्या बकवास करते थे, मरवा दिया, देखा मूसा की बातों में, आगे देखा क्या हुआ, आगे दरिया, पीछे फिरौन, कहां जाए, किधर जाए, फंस गए, मर गए, कह रहे थे अरे गुलाम थे जिंदा तो थे बदबख्त, मलून कहते जिंदा तो थे, भले गुलाम थे जिंदा तो थे, लेकिन इब्राहिम और मूसा और उनके फॉलोअर्स क्या सिखाते, नहीं मर जाओ गुलामी कबूल नहीं करो, अब आई किसकी जंग है ये, एक अहम सवाल, तारीखी सवाल, जिसका जवाब चंद मिनट में आपको देके मैं इसको खत्म कर दूंगा। है बड़ा शोर हो रहा है ना दुनिया में, हमारे यहां भी बैठे हुए बलोंगड़े मुनाफिकीन, अजीब अजीब हुलिये बना के, हमारे जैसे हुलिये बना के बैठे हुए बदबख्त लोग, जिन्हें बड़ी मंसूबा बंदी के साथ भेजा गया था नजफ को, कुछ को नजफ भेजा गया, कुछ को कुम भेजा गया कि ये कौम ऐसे तो बहकेगी नहीं, ऐसे ही बन के आओ जो इस कौम को पसंद है। लेकिन अल्लाह भी ऐसा करता है काम, यानी उसकी मशीयत भी ऐसे काम करती है जनाब, कि एक ही वाकये ने सबके चेहरों से नकाबे उतार के फेंक दिए, एक ही वाक, एक गज़ा ने सबको बेनकाब कर दिया, सबके बरम खुल गए, अब यहां तक खुल के आ गए सब कि किसी को यह भी तमीज नहीं रही कि यजीद एक यजीद नहीं था, करबला के बाद यजीदियत में ढल गया था।
हुसैनियत
जिंदा,
हुसैनियत यजीदियत
मुर्दा,
यजीदियत नारा हैदरी।
जिन्होंने 12 चनार में जिन्होंने मारा, क्या कहूं उनको, यजीदी नहीं कहूं, चलो तुम कोई नाम बता दो वो दे दूंगा, तुम्हें खुद ही नहीं पता क्या कहोगे उन्हें, वो क्या पता तुम्हारी दोस्ती हो उनसे, क्या कहें उनको, क्या कहें तालिबान को, क्या कहें दाइश को, क्या कहें बोको हराम को, क्या कहें शबाब को, क्या कहें जुबहतुन्निसरा को, क्या कहें इसराइलियों को। کیفیت نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ، اصل مسئلہ نہیں سمجھ رہے، اصل مسئلہ نہ یزید کا ہے ان کے نزدیک، نہ حسین کا ہے آج، اصل مسئلہ یہ ہے کہ رہبر پہ ضرب کیسے لگانی ہے، اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انقلاب پہ ضرب کیسے لگانی ہے، اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ولایت فقی پہ ضرب کیسے لگانی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، یہ ان کا پرابلم ہے بس۔ اب آئیے، کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، یہی ہے بات جو بتانے جا رہا ہوں بس، پھر ان کے بعد میں دیکھ سکتا ہوں، ہماری جنگ، ہمارا کیا واسطہ، ہمارا ان سے کیا واسطہ، وہ تو ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، تو پھر وہ نمازی جنازے تو پڑھاتا ہے نا، تو اس میں سے وہ ایک جملہ نکال دے، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین، تو نکال دینا بھائی، کیوں پڑھاتا ہے، خود بھی پڑھاتا ہے، میں نے دیکھا اس کو، خود بھی کہہ رہا ہے والمسلمین، نکال دے، حجی سے کس میں سے بھی نکال دے، کیونکہ خالی شیعوں کا ذکر تھوڑی ہے وہاں، وہاں شیعہ تو نہ، وہ محبین، یعنی شیعہ الگ ہے محب، حدیث کیسا پڑھ رہا، روز پڑھ رہا، خود پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب اتنا بڑا جاہل ہے، نہ نماز جنازہ کا مطلب جانتا ہے جو پڑھ رہا ہے، نہ حدیث کیسا کا مطلب جانتا ہے جو پڑھ رہا ہے، محبینا کہہ رہے محبینا، تو شیعہ الگ ہے محب، بہت روایتیں اس بارے میں، چلیے آگے چلے، ہماری جنگ نہیں ہے، سنو کس کی جنگ ہے، علی کے شیعوں سنو، لے کے جاؤ تحفہ، آج پوری دنیا میں یہ تقریر میری جا رہی ہے، سنو کس کی جنگ ہے، خندق، جنگ احزاب، نیٹو فورسز کا اجتماع، ساری اتحادی فوجیں جمع، اس زمانے کا 15,000 کا لشکر، کم سے کم جس نے لکھا اس نے 10 سے 11,000 لکھا، 10 سے 15,000، آبادی مدینے کی کتنی، 20, 25, 30, 35 کچھ رکھ لو، اتنی آبادی تھی کہ جنگ بدر میں کتنے لڑائی کرنے کے لیے نکلے تھے، کتنی بڑی فوج تھی مسلمانوں کی جنگ بدر میں، 300، سمجھ آئی، جنگ احد میں 1,000، 300 منافقین نکل لیے پتلی گلی سے عبداللہ ابن عبی کے ساتھ، کتنے بچے، 700، لڑنے والے کتنے بچے، اب اندازہ ہو رہا ہے کہ 10 سے 15,000 کا لشکر کتنا بڑا ہوتا ہے، کس نے جمع کیا تھا یہ لشکر، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، اچھا اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سمجھو مسئلہ کیا ہے، کس کی لڑائی ہے، ابھی بتاتا ہوں آپ کو یہ لڑائی کس کی، جنگ احزاب کس نے منظم کی تھی، سنو، بنی المصطلق، پہلا قبیلہ یہودیوں کا، وہ جس نے رسول کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی تھی، ان کو نکال دیا گیا تھا، قتل نہیں کیا گیا، نکال دیا گیا، بنی قینقا نکال دیے گئے، بنی نزیر خود چلے گئے، کچھ کو نکالا گیا، خود کچھ چلے گئے غداریوں کی وجہ سے، ان سب کو نکال دیا گیا، بنی قریظہ مدینے میں معاہدہ کیا تھا، جب بھی باہر کا کوئی حملہ کرے گا مل کر دفاع کریں گے، نہیں کیا دفاع، بدر میں بھی نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا، احد میں مل کر دفاع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا، چھوڑ دیا، ایسے ہی ہے نا، چھوڑ دیا نا، تاریخ بتا رہا ہوں، پورا ایسے ہی ہوا، چھوڑ دیا، نہیں دیا صاحب کوئی بات، لیکن اب کیا کیا، بنی قریظہ نے، بنی قینقا، بنی نظیر، بنی المصطلق، بنی سلیم، جتنے یہ قبیلے تھے یہودیوں کے، ان سب نے منظموں کے سازش کی، کفار قریش کو حملے کے لیے اکسایا کہ ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے، تم باہر سے حملہ کرو، ایک ہی بار اٹیک کریں گے مل کر، اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے ان کو، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، ختم کر دیں گے سب کو، فنش، اسلام ختم، معاذ اللہ مسلمان بھی ختم، ایک ہی بار حملہ کرو، اتنا بڑا حملہ تھا کہ اللہ کے رسول کو خندق بنانی پڑی نا، کیونکہ اتنے سے لشکر کے ساتھ میدان میں لڑا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ احد سے بھی پتہ نہیں کیا برا حال ہوتا، اب تو سمجھ میں آ گئی میری بات، نہیں لڑا جا سکتا، خندق بنانی پڑی، ایسے ہی ہوا، یعنی داؤ پہ لگا دی اسلامی سلطنت، داؤ پہ لگ گئی نا، اسلامک اسٹیٹ ختم ہونے جا رہی تھی، اللہ نے مدد کی، کس کی صورت میں، وہ جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھا نا، اس کو انہی نے بھیجا امریکہ کو، ادھر سے جو رسول کے پاس سب سے بڑی طاقت تھی اسے بھیجا علی کو. یہی تھی نا آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں. ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھا اسے بھیجا, رسول کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی اسے بھیجی. نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں پڑھ رہا خندق تفسیر سے, آپ سنتے رہتے ہیں, میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. ختم ہو گئی جان, کمر ٹوٹ گئی ان کی عمر ابن عبد الوہاب کے قتل کے نتیجے میں. اوپر سے اللہ نے آندھی بھیج دی, طوفان بھیج دیا, باری بھیج دی, بھاگ گیا, آپس میں جھگڑا بھی ہو گیا, دفاع ہو گیا, جیت گئے مسلمان. یہ سازش کس کی تھی؟ ابھی میں نے کیا بتایا, اس سازش کے نتیجے میں تمام یہودیوں کو حکم دیا نکل جاؤ, چھوڑ دو یثرب, یثرب کو چھوڑ دو. یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ وہاں کی تھی, لیکن پھر کبھی صحیح, کیونکہ اس کی تشریح بڑی طویل ہے جو میں نے آیت کی تلاوت کی سورہ احزاب کی. لیکن اب یہ پوائنٹ بتانا میرا بہت اہم ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. کیا کیا ان یہودیوں کو اللہ کے رسول نے؟ بنی قریظہ نے تو اپنا قسمت خود ہی لکھی نا, خود ہی طے کیا تھا کہ جنائی ان کو بنائیے نا, زرارہ کو, اسد ابن زرارہ, زرارہ ابن اسد کو ان کو بنا دیئے. انہیں نے فیصلہ کیا سب کی گردنیں مار دو, تو انہیں نے اپنی موت تو خود قبول کی تھی, نکال دیا. تو یثرب کس کے ہاتھ سے گیا؟ یہودیوں کے. کس کے ہاتھ سے گیا؟ یہودیوں کا ہول تھا نا عزیزو. اوس و خزرج تو لڑتے تھے آپس میں, ان پہ حکومت کرتا تھا یہودی, اسلحہ بیچتا تھا ان کو. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ مختصر مختصر کر کے ایک ایک جملہ بتا رہا ہوں. نو مدینہ کس کے ہاتھ سے گیا؟ یہودیوں کے ہاتھ سے. کس کی وجہ سے گیا؟ علی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے گیا؟ کس کی وجہ سے گیا؟ علی نے مارا تھا نا سب سے بڑی طاقت کو, تو ایک دشمنی پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ علی کی وجہ سے یثرب ہمارے ہاتھ سے نکلا. خیبر کس کا قلعہ تھا؟ کس کا قلعہ تھا؟ یہودیوں کا. یہ سارے بھگوڑے یہودی وہاں جمع ہوئے تھے فدق سے لے کے خیبر تک. خیبر کس نے چھینا تھا ان سے؟ کس نے چھینا تھا؟ علی نے. آج بھی یہ زیونسٹ دنیا میں جہاں بھی احتجاج کرتے ہیں, اسرائیل کی حمایت میں مظاہرے کرتے ہیں, ایک پلے کارڈ ضرور لے کر آتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے خیبر واس یور لاسٹ چانس. اے مسلمانو, خیبر تمہارا آخری موقع تھا, خیبر تمہاری آخری فتح تھی. انصاف سے بتاؤ, یہودی آج تک خیبر کو بھلا سکے؟ بتاؤ. وہ ہماری یہاں علماء جانتے ہیں, ہماری یہاں بعض بکرات پیدا ہو گئے نا کہ کیا خیبر خندق کرتے تھے. خیبر خندق تجھے پتہ ہے کچھ؟ خیبر خندق ہے کیا تجھے معلوم ہی نہیں؟ آج تک وہی خیبر خندق کی تو لڑائی چل رہی ہے, آج تک وہی خیبر خندق ہے, کیونکہ علی نے ان سے چھینا تھا مدینہ بھی خیبر بھی. آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں, نہ مدینے کی شکست بھولا ہے یہودی, نہ خیبر کی شکست بھولا ہے. آج وہ نکلا ہے کہ علی نے جو خیبر چھینا تھا وہ ان سے واپس لیا جائے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا چھینا ہوا خیبر وہ واپس لینے آئے, اور علی کے چھ, علی کے لاڈلے, علی کے جوان, علی کے غلام میدان میں نہ. حیدر کیسے ہوگا کہ علی والے نہ آئے؟ اب معلوم ہو گیا کس کی جانے, یا رب بچائیں گے خبیث, یا آل سعود بچائے گی جس نے مکے اور مدینے میں لا کے یہودیوں کو بٹھا دیا, یہ بچائیں گے؟ یہ تو سب دے بیٹھے, بیٹھے یہودی وہاں ہوٹلوں میں بیٹھے, بلڈنگیں بنا رہے, کنسٹرکشن کر رہے ہیں مکے میں مدینے میں. ہو کہاں تم پہنچ گئے وہ, یہ بچائیں گے؟ اسی لیے تو بڑا خوش ہے زیونسٹ کہ عربوں کو قابو کر لیا, اب یہ پورا مکہ مدینہ خیبر سب میرے پاس آ جائے گا. اسے نہیں پتا, اسے نہیں پتا اللہ کی مدد کی بھی شکلیں ہیں, ہے نا؟ انہی میں سے ایک مدد کا نام تھا نصر اللہ. एक का नाम क्या है? हसन। अब समझ में आया किसकी लड़ाई है? समझ में आ गई पूरी तरह मेरी बात कि कोई लड़े या ना लड़े,
अली वाले मैदान में रहेंगे, क्योंकि हमारे मौला ने इनसे छीना है। मजाल क्या है कि ये वापस लेके चले जाए। आखिरी जहूर भी इसलिए होगा। समझ में आया हमारी बात? बस खत्म करता हूं मैं बात को। वलम्मा राल मोमिनून अलहजाब, यकीन की बात शुरू की थी वहीं से खत्म करता हूं। जब मोमिनीन इन लश्करों को देखते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं? मुनाफिकों का तो हाल खराब हो जाता है। इसी सूरह अहज़ाब में 12वीं आयत में मुनाफिकीन का जिक्र है। वैसे कुलुल मुनाफिकूना वफी कुलूबिहिम मरदुन, और जैसे ये देखते थे मुनाफिकीन, ये सारे इनके लश्करों को देखते थे तो कहते थे कि भाई ये मा वादन अल्लाह इल्ला गुरूरा, मा वादन अल्लाह रसूलहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और रसूल का वादा सिवाय धोखे के कुछ नहीं। लेकिन जब मोमिन देख रहे थे इन लश्करों को, तो मोमिनीन ने क्या कहा? हाज़ा मा वादन अल्लाह व रसूलहु, यही तो वो वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया है। वसदक अल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह और उसका रसूल सच्चा, उसका वादा सच्चा। वमा आजाद हूं इल्ला ईमानम व तस्लीमा, इन लश्करों को देखकर उनका ईमान कमजोर नहीं होता, उनका ईमान और जज्बा तस्लीम और रजा और बढ़ जाया करता, और बढ़ जाता। यह है वो यकीन कि पूरी दुनिया मिलकर भी आ जाए। हमने हुसैन से सीखा है, खुशियों के जो शादियाने बजा रहे ना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लगे, मत घबराया करो। और तुम्हारा यकीन पुख्ता होना चाहिए कि यही वो लोग थे बदबख्त, उन्हीं की औलादे हैं जिन्होंने कत्ले हुसैन पे शादियाने बजाए थे। बजाए थे कि नहीं बजाए थे? हसन नसरुल्ला की क्या अहमियत है हुसैन के आगे? हुसैन के कत्ल का ऐलान भी तो इसी तरह किया था इन मलूनों ने, जैसे मस्जिद नबी से हसन नसरुल्ला के कत्ल का ऐलान किया। ऐसे ऐलान के जरिए ढोल बजा के बाजे बजा के हुसैन के कत्ल का ऐलान। ये पूरी तारीख ऐसे इसलिए थोड़ी कुरान नकल करे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, यह वो गर्दिशे दौरान जो आ रही है सारी की सारी। लिहाजा घबराना नहीं है। अभी ये खबर आई है, फिर मैं कहता हूं कि बड़े हौसलों के साथ, मैंने पहले भी कहा था 7 अक्टूबर को जब जंग शुरू हुई थी, 8 को मैंने कहा था, रिकॉर्ड पर मेरी तकरीर मौजूद है कि भाई अभी जंग शुरू हुई, और मैं फिर कह रहा हूं कि अब दूसरा फेज, अब आज से क्या शुरू हुआ है, बल्कि परसों से शुरू हो गया जंग का दूसरा फेज। अब ये दूसरे फेज में लड़ाई गई, लड़ाई गई लंबी गई। इत्मीनान को जो रहबर ने कह दिया ना इशारों में, कल रहबर ने कही एक बात इशारों में, समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले रसूल की नहीं समझे रहबर की कहां से समझेंगे, अइमा ताहिरीन की नहीं समझे रहबर की कहां से समझे। उनको अभी तक यही नहीं समझ में आया कि विलायत फकीह क्या है, उनको यही नहीं पता। उन्हें पता नहीं है कि विलायत फकीह का पावर देख रहे हो आज, कि अगर इन शैतानी ताकतों से कोई लड़ सकता है तो वही इमाम का गुलाम लड़ सकता है, वही नायब इमाम लड़ सकता है, ये छिछोरे नहीं लड़ सकते चौराहों पे बैठने वाले। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खत्म किया, बस यकीन रखिए, इस बात का यकीन रखिए। जैसे अभी खबर मिली है ना, ये फेस है जो रहबर ने इशारा किया कि मैं कुछ देख रहा हूं। इशारा क्या है? जहूर जहूर जहूर। एक ऐसा वक्त आता है अजादारों, याद रखो, जब इंसान अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करता है ना, कि कोई तो ऐसी ताकत हो मुझे जालिमों के चंगल से निजात दिलाए। अच्छा ये बताओ, अगर हक समझ में नहीं आता, बातिल तो समझ में आता है ना, झूठ जुल्म गसब तबाही बर्बादी फितना बातिल है ना, तो ये देख लिया करो कि बातिल किस तरफ है, ये देख लिया करो कि बातिल के तीर कहां जा रहे हैं। जिस तरफ बातिल के तीर जा रहे हैं ना, जो बातिल के तीरों का निशाना है, वही तो हक है। इस वक्त ये पूरी दुनिया है कुफ्र और निफाक और शिर्क, सोशल डेमोक्रेट डेमोक्रेट लिबरल ब्यूरोक्रेट वो लिबरल सेकुलर और जितने फलाने फलाने सारे, और अपने भी बता दिए ना, पता नहीं कितने आपको भी टकराते होंगे सोशल मीडिया पे, अपने भी गैर भी सारे मजहबी फिरकागर ये वो सब इकट्ठा कुफ्र शिर्क और निफाक मुत्तहिद होकर आया है। तो ये हमारे यकीन में इजाफे का बाइस है। बस इसका मतलब ये हुआ कि हम हक पर हैं, क्योंकि सारा बातिल एक जगह इकट्ठा होकर। क्या कहा था, सवाल किया था शहजादे अली अकबर ने अपने बाबा से करबला के मैदान में, बस मैंने खत्म कर दिया। यही तो सवाल किया था जोहर आशूर,
जब आधे से ज्यादा लश्कर कट चुका था, हुसैन सबको गंजे शहीदा में लिटा चुके थे। क्या कहा था? बाबा हम हक पर है ना। कितना देखिए वही जुमला मैंने जहां से शुरू की थी मजलिस वहीं पे खत्म कर रहा हूं। हम हक पर है ना, यानी सबसे बड़ी चीज क्या है? ये जानना कि हक पर है या नहीं है। हम हक पर है ना। हुसैन ने सीने से लगा कि हाँ बेटा, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, हम हक पर है। तो क्या कहा था? फिर क्या पर पूरी दुनिया इकट्ठा होके आ जाए, सारी ताकतें इकट्ठा होके आ जाए, फिर क्या पर? असल बात यह कि हम हक पर है। जब हक पर है फिर कोई परवाह नहीं मारे जाने की, काटे जाने की। बाज लोग कहते हैं मेरे बिरादर अजीज ने बहुत अच्छी जगह मसायब को खत्म किया, यानी दो जुमले जो पढ़े जनाब शहजादे अली अकबर के बारे में, उन्होंने उसे सोच लिया था कि मैं भी इसी शहजादे का जिक्र ताकि तसलसल कायम रहे वहीं से शुरू करूंगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब अली अकबर जो देर से जा रहा था उसकी प्यास ज्यादा थी, जो पहले चला गया उसकी प्यास कम थी। मेरे कुछ बुजुर्गों ने भी कहा, लेकिन मैं नाचीज जरूर हूं, तालिब इल्म, तालिब इल्म की हैसियत से इख्तिलाफ करने का हक रखता हूं, मुझे हमेशा इस बात से इख्तिलाफ रखा। मैं कहता नहीं, आशूर के दिन अंसार हुसैनी के सामने पानी का मसला नहीं था, नहीं था। अब मैं बताऊं आपको क्या हुआ। जब सुबह जंग का आगाज हुआ, फितरी सी बात है कि सबसे पहले अली अकबर मैदान में आए और हुसैन ने इजाजत दे दी, जाओ बेटा। लेकिन कैसे जाते अली अकबर? अंसार हुसैनी ने सफे बांध ली। मौला ये कैसे होगा, हम अभी लड़े ही नहीं, क्या मुंह दिखाएंगे? आपके नाना को जाकर, आपके बाबा को जाकर। हमारे होते हुए अली अकबर मैदान में नहीं जाएगा, पानी का मसला नहीं। अंसार हुसैनी की गैरत और हमियत गवारा नहीं करती कि वो जिंदा हो अली अकबर मैदान जंग में चला जाए। अंसार हुसैनी ने वादा पूरा किया, फिर अली अकबर ने चाहा, बाबा मैदान में जाओ। जाओ बेटा, हुसैन ने कहा जाओ। औलादे जाफर अकील सामने आ गई। ए इब्ने अम्म, ये कैसे होगा, न हमने अभी जख्म लगाए, न जख्म खाए, न तलवारें मारी, न तलवारें खाई, और अली अकबर मैदान में, शबीए पैगंबर मैदान में चला जाए, क्या मुंह दिखाएंगे आपके नाना को, क्या मुंह दिखाएंगे आपके बाबा को? ये नहीं हो सकता, हमारे होते हुए अली अकबर शबीए पैगंबर मैदान में जाए। जब अली अकबर जाने की कोशिश करते थे कोई ना कोई आगे बढ़ता था, लेकिन एक वो वक्त आया कि अली अकबर फिर आए और आने के बाद का बाबा अब मुझे इजाजत दे दीजिए मैदान में जाने की। तो मेरा दिल कहता है हुसैन ने शायद कभी दाएं देखा हो, कभी बाएं देखा, कोई आगे बढ़े। आगे बढ़कर कहते नहीं मौला, अभी अली अकबर नहीं जाएगा कोई नहीं। वो वक्त आया कि जब अली अकबर को कोई रोकने वाला ना रहा। और ये मैं पूरे वसूख से पढ़ता हूं ये मसाइब का हिस्सा, क्योंकि जब मैं आखिरी जुमला पढ़ूंगा दमत उस साकिबा से, तो आपको यकीन हो जाएगा कि अगर कोई और होता तो जरूर हुसैन की मदद के लिए आता, कोई ना था जब अली अकबर के सरहाने गए थे। बहरहाल हुसैन कैसे रोकते अपने अली अकबर को, सबके लाशें तो खुद उठा के लाए थे ना। जाओ बेटा, माँ से रुख्सत हो लो, माँ की खिदमत पे आए आखिरी सलाम की। और जाहिर है कि माँ ने कहा बेटा जिस फूफी ने पाला है उसके पास जा। बस अब रिवायत के अल्फाज नहीं, जो वाकया है वो मैं अपने अल्फाज में हमेशा बयान करता हूँ। आए फूफी की खिदमत में, मुश्किल मरहला है ना, सलाम किया फूफी ने, जवाब तो दिया मगर मुंह फेर लिया। हैरत से कहते हैं अली अकबर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आए हों आपने रुख फेर लिया। आपके अली अकबर से कोई खता हुई? सानिया जहरा फरमाती है नहीं मेरे लाल, भला तुझसे कोई खता हो सकती, लेकिन मैं जानती हूं आज तू किस इरादे से आया है। अली अकबर तेरी जवानी बचाने के लिए मैंने अपने ओन मोहम्मद को कुर्बान किया, कैसे मैदान में जाने दें? अली अकबर भी तो आलिमा गैर मौलिमा के आगोश के परवरदा है ना। फूफी अम्मा नहीं जाऊंगा जब तक आप इजाजत नहीं देंगे, अली अकबर मैदान में नहीं जाएगा। बस एक मसला हल कर दीजिए। बेटा इस मौके पर क्या मसला? का मसला यह है कि ये बताइए आपका मर्तबा बुलंद है या मेरी दादी जहरा का? का बेटा ये कैसी बात? कहां मैं अदना सी कनीज, कहां वो सैयद निसाए आलमी? कोई मुकायसा, कोई मुकाबला, कोई मुआजना?
अच्छा फूफी अम्मा बस ये और बता दीजिए कि अगर कयामत के दिन मेरी दादी जहरा ने पूछ लिया जैन अपने अली अकबर को बचा लिया मेरा हुसैन कत्ल हो गया। मुख्तसर करता हूं हालांकि मैं अली अकबर की शहादत जनाब अली अकबर की शहादत मुख्तसर नहीं पढ़ता मुख्तसर करता हूं। इस तरह इजाजत ली खेमे से बाहर निकले हुसैन ने गले से लगाया सवार कराया जाओ बेटा हम भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। अली अकबर चले मैदान की तरफ एहसास हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जो पलट कर देखा तो क्या देखा बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर था। अली अकबर उतर आए बाबा आप तो मुझे रुख्सत कर चुके हैं अगर ऐसे मेरे पीछे पीछे आएंगे मैं कैसे जंग करूंगा कैसे मैदान में जाऊं। ये वो वक्त है जब हुसैन ने बेताब होकर अली अकबर को सीने से लगाया और बीच मेरे लाल तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और इस तरह तीरों तलवारों के जख्म खाने जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता। अच्छा मेरे लाल जहां तक हो सके मुड़ मुड़ कर मुझे देखता जा और मुख्तसर करता जंग शुरू की अली अकबर ने। हुसैन का आलम यह था कि मैदान में कभी दाएं तरफ दौड़ते थे कभी बाएं तरफ क्यों जिस समत में अली अकबर हमला करने जाते थे हुसैन उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देते। मैंने बीच में बहुत कुछ छोड़ा एक वक्त वो आया जब हुसैन को अली अकबर नजर नहीं आते आवाज दे रहे अली अकबर मेरे लाल किस तरफ है आवाज दे। अली अकबर के कानों में आवाज तो आ रही है लेकिन अली अकबर कैसे बताए बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई तेरे अली अकबर के सिपर गिर गई तेरे अली अकबर का खोद गिर गया बस चारों तरफ से वार थे तलवारों के बर्छियों के। अली अकबर जख्मों से निढाल होकर घोड़े की पुष्ट पे गिर पड़े गर्दन में अपनी बाहें डाल दी अभी गिरे नहीं थे घोड़े से कि सनान इब्ने अनस या हकीम इब्ने तुफैल इन दो में से कोई एक आगे बढ़ा इस मलून ने पूरी पर्ची अली अकबर के कलेजे में बस। अब जो अपनी बर्छी को वापस खींचना चाहा बर्छी का फल जवान की पसलियों में उलझ कर टूट गया था बस अजादारों इस बर्छी का लगना था अली अकबर से घोड़े पे ठहरा ना गया गिरते गिरते आवाज दी या बताहु अलैकुम इन्नी अस्सलाम ए बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। हुसैन के कानों से आवाज टकराई गश खा के गिर पड़े पुकार कर कहा या बुनैया अलग दुनिया बादकल अफा ए मेरे लाल तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक हो। चलना चाहा जब हुसैन से चला न गया अपने आप को जानुओं के बल कभी पंजों के बल कभी कोहनियों के बल रेत पर अपने वजूद को घसीटना शुरू किया आवाज देते जाते अली अकबर आवाज दे किस तरफ गिरा है कि बूढ़ा बाप तेरे सरहाने पहुंचे न जाने किस तरह ठोकरे खाते हुए हुसैन आए अली अकबर के सरहाने क्या देखा अभी रमक जहां बाकी है सर उठाया जानू पे रखा अजादारा ने हुसैन रुखसारों पे रुखसार रख के कहा बेटा आंखें खोल देख बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली बाबा को सलाम किया हुसैन ने जवाब दिया हाल पूछा अली अकबर कहते बाबा नेजे की अली टूट के कलेजे में रह गई है बहुत अजियत में हूं बहुत तकलीफ में हूं। अच्छा मेरे लाल ये इम्तिहान भी लेगा हुसैन ये इम्तिहान भी देगा। अली अकबर को लिटा दिया जलती रेत पे दोनों घुटने जमीन पर एक हाथ अली अकबर के सीने पर दूसरा हाथ कलेजे में बच्ची का फल निकालने के लिए मुझे यकीन है नाना भी आ गया होगा बाबा भी आ गए होंगे भाई भी आ गए होंगे अरे माँ तो मदीने से पीछे पीछे चली आ रही होगी। अजादारों बस हुसैन ने कोई बईद नहीं बाबा से कहा हो बाबा खैबर का दर उखाड़ा था अब बताओ खैबर का दर उखाड़ना मुश्किल है या अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचना। अल्लाह अकबर कहा बर्छी उसी का फल खेचा, इधर कले इधर फल निकला उधर कलेजा साथ आ गया, इधर कलेजा निकला अली अकबर का दम निकल गया। हुसैन ने सारी ताकत जमा की, अली अकबर के लाशे को उठा लिया, उठा तो लिया मगर चला ना गया हुसैन से। फिर जलती रेत पर लाशे को रखा, दोनों हाथों से सर थाम कर कहता है हुसैन मेरे लाल मुझसे तेरा लाशा नहीं उठता। कभी गंजे शहीदा का रुख करके आवाज देते हैं मेरे शेरो मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। कभी खेमे का रुख करके आवाज दी ऐ अतफाल बनी हाशिम आओ मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। हुसैन की आवाज खेमों से टकराई, खेमों के पर्दे उठना शुरू हुए, छोटे छोटे बच्चे वाह हुसैना कहते दौड़े कत्लगाह की तरफ। उधर हुसैन ने अपने दोनों हाथ अली अकबर के बाजुओं में डाले। ये वो जुमला है दमतुस साकिबा का जो गवाही देता है कि उस वक्त हुसैन के साथ कोई भी ना था अली अकबर का लाशा उठाने। अपने हाथ अली अकबर के बाजुओं में डाले, अली अकबर के लाशे को घसीटना शुरू किया। रावी लिखता है इस तरह अली अकबर घिसटते जाते थे कि अली अकबर के कदमों से रेत पर लकीरें बनती जाती थी। इतने में बच्चे पहुंच गए, बच्चों की मदद से अली अकबर का लाशा खेमे में पहुंचाया। बीबियों ने हल्का किया, अली अकबर का मातम शुरू किया। सानिया जहरा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, अली अकबर की माँ उम्मे लैला नजर ना आई। फिजा से